Trinity. कल बाबा ने कहा रहम की लहर वैराग्य वृत्ति के द्वारा फैलाओ, बेहद के वैराग्य वृत्ति के द्वारा फैलाओ। ये कुछ बाबा के महावाक्य है, बाप दादा का इशारा। बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो, कई सारी मुरलियों का संकलन है इसमें। तो इस हफ्ते के लिए हमारे लिए होमवर्क है पावरफुल वैराग्य वृत्ति, पावरफुल तपस्या, पावरफुल मनसा सेवा, पावरफुल साधना। ये मुरली है 26 जनवरी 1970 की। जितना स्नेही होगा उतना बेहद का वैराग होगा, जितना स्नेही उतना बेहद का वैराग। यह है किसका अर्थ, स्नेह भी जहां है और वैराग भी जहां, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें दोनों शब्द आ जाते हैं। वह शब्द जहां हम रहते हैं, यह है मधुबन का अर्थ, अति स्नेही और इतना ही बेहद की वैराग वृत्ति। अगर मधुबन के विशेष गुण जीवन में धारण करके जाए तो सहज ही संपूर्ण बन सकते हैं। एक स्नेह से दूसरे बेहद की वैराग वृत्ति से कोई भी परिस्थिति को सहज ही सामना करेंगे। सफलता के सितारे बनने के लिए यह दो गुण मुख्य, मधुबन की सौगात ले जाना, अभी ऐसे बदल कर दिखाओ जो सभी के आगे धारण मूर्त दृष्टांत एग्जाम्पल सैंपल, जो भी देखे क्या अनुभव करे, कल की मुरली से नैनों में, दृष्टि में, बोल में, वाइब्रेशंस में, कैसे है, न्यारे है, अलौकिक है, साधारण नैन नहीं है, अलौकिक नैन है। जो भी देखे क्या कहे, कहां से आए, किसके हैं, कैसे बने, ये प्रश्न उनके मन में आए। इस वायुमंडल में भी ऐसे बन सकते हैं, वो खुद ही स्वयं स्वयं से पूछे कि ऐसे भी बन सकते हैं क्या। तो अभी ऐसा बदल कर दिखाओ जो सभी के आगे एग्जाम्पल बने। अब एक सेकंड भी नहीं गवाना। वक्त है कम और लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। साधन और सुविधाओं के शैया पर मत सो जाना, माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश न हो जाना। तुम्हें सतत साधना की उन्नत सीढ़ी पर चल गलना होगा। इसके लिए वक्त है कम और लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा, एक नया पथ रचना होगा। तो अभी ऐसे बदल कर दिखाओ जो सभी के आगे एग्जाम्पल बने। अब एक सेकंड भी नहीं गंवाना, चेक आप कर सकते हो, अब समय बहुत थोड़ा रहा है। 1970 समय भी बेहद के वैराग, बेहद की वैराग वृत्ति को उत्पन्न करता है। एक है पहले से वैराग वृत्ति उत्पन्न करना, अगर नहीं की तो समय उत्पन्न करेगा। कैसे, ऐसी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करेगा, कुछ नहीं मिलेगा, साधन नहीं मिलेंगे, तब वैराग आएगा फिर। लेकिन समय के पहले जो अपनी मेहनत से करेंगे उनका फल ज्यादा, उनको फल ज्यादा मिलेगा, उनका लिखा है। जो खुद नहीं कर सकेंगे उन्हों के लिए समय हेल्प करेगा, लेकिन वह फिर समय के खाते में, लेकिन वो समय की बलिहारी होगी, अपनी नहीं। तो क्या सुना, जितना स्नेही होंगे उतना बेहद के वैरागी, तो वैराग को धारण करना है, वैराग वृत्ति को इमर्ज करने के लिए बाबा ने कहा। साधन तो बहुत दे दिए, आवश्यकता से ज्यादा साधन दे चुके हैं बाबा, आवश्यकता भी है उनकी सेवा के लिए, परंतु अभी साधना को बढ़ाओ, अभी साधना को बढ़ाओ। पावरफुल साधना, पावरफुल वैराग, पावरफुल तपस्या, पावरफुल सेवा, मनसा सेवा के निमित्त बनो। किससे? तपस्या से। मनसा सेवा के निमित्त कैसे बनना है? तपस्या के आधार से। अति स्नेही और इतना ही बेहद की वैराग वृत्ति। अगर मधुबन के विशेष गुण जीवन में धारण करके जाए तो सहज ही संपूर्ण बन जाएंगे। एक स्नेह से दूसरे बेहद की वैराग वृत्ति से कोई भी परिस्थिति को सहज ही सामना कर सकते हैं। अगर बेहद की वैराग वृत्ति है तो कोई भी परिस्थिति आए सामना कर सकते हैं। परिस्थिति आए भी आएगी भी कहां से? पुरानी दुनिया है, आज की मुरली का वरदान। कोई भी बात तुम्हारी खुशी को गायब नहीं कर सकती, कोई भी बात तुम्हें फिकर में नहीं ला सकती। ब्राह्मणों के साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा, बुरा हो ही नहीं सकता, जो होगा अच्छा होगा। हर बात में पॉजिटिविटी देखने का संस्कार, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे ना महाभारत में, श्री कृष्ण का पात्र ऐसा है कि जहां हर जगह पर वो ऊपर से देखा जाए तो अन्याय हो रहा है, बार बार अन्याय हो रहा है पांडवों के साथ, परंतु श्री कृष्ण के चरित्र ऐसा है कि वो हर जगह सकारात्मकता ही देखता है, हर जगह ऐसा देखता है कि जैसे उसमें ही कुछ कल्याण छिपा हुआ है। ये उसके इसके लिए वो एकमात्र पात्र ऐसा है जिसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आते, वो अचल अडोल है, जो हमारी परिभाषा के अनुसार कोई भी परिस्थिति उसे दुखी नहीं करती, कोई भी परिस्थिति उसे उदास नहीं करती, कभी कभी वो डिप्रेशन में नहीं जाता है, कोई डर नहीं है उसको किसी का भी, कोई भी प्रभावित अप्रभावित है वो, ऐसा व्यक्तित्व है उसका, वो हमारी संपूर्ण अवस्था का जैसे प्रतीक है और निरंतर उसको याद है कि मैं किस लिए आया हूं। वो दिखाया है जब वो सांदीपानी के आश्रम में रहता है तो उसका जो मित्र होता है वहां सुदामा, वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत मुरली बजाते थे पहले। वो कहता है मुरली बजाने का युग समाप्त हुआ, तब बस अब नहीं, वो तभी मेरा पार्ट था। उसको निरंतर याद है वहां वो समाप्त हुआ, अभी ये पार्ट चालू हो गया, अभी वो बातें इधर नहीं लानी है, वो पार्ट उधर का था, अभी ये पार्ट दूसरा है। निरंतर उसे स्मृति है और इसके लिए उसकी स्थिति जो है वो अचल अडोल है। कोई भी बात उसे डिस्टर्ब करती, कहीं पर भी वो डिस्टर्ब होते हुए नहीं दिखाया गया है, बहुत ही दुखी हो गया, उदास हो गया, कहीं पर भी नहीं। तो एक स्नेह से दूसरे बेहद की वैराग वृत्ति से कोई भी परिस्थिति को सहज ही सामना कर। सफलता के सितारे बनने के लिए दो मुख्य गुण मधुबन की सौगात ले जाना। अभी ऐसा बदल कर दिखाओ जो सभी के आगे एग्जाम्पल बनो। अब एक एक सेकंड भी नहीं गवाना। चेक आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ऐसी सूक्ष्म चेकिंग। कल भी बाबा ने 5 बातों की सूक्ष्म चेकिंग करी थी। कौन सी थी पूर्णिमा बहन? कौन सी बातों की अंतर्मुखी होकर चेकिंग करनी है? 5 मुख्य बातें। अगर उन बातों की चेकिंग की तो छोटी सी सिस्टर, छोटी बहन से बड़ी बहन के पास, बड़ी बहन से जोन इंचार्ज के पास, जोन इंचार्ज से मधुबन के पास, मधुबन में आने के बाद क्या हो जाएगा? फिर ताली बजेगी और बाप दादा इनाम प्राइज देंगे। ऐसी वो 5 बातें थी जिसकी बाबा ने कल कहा सूक्ष्म चेकिंग करो। कौन सी थी? बहनों की तरफ से किसमें? सबसे पहला कितनों को सुख दुख तो नहीं दिया परंतु सुख का खाता कितना जमा किया, फर्स्ट चेकिंग। दूसरा, नाराज तो नहीं किया परंतु राजी कितनों को किया, और किसको राजी किया? जो नाराज है उसको राजी किया कि जो राजी है उसी को राजी कर दिया? ये सेकंड। तीसरा मीना सिस्टर, कौन सी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कल की मुरली से? व्यर्थ संकल्प तो नहीं चला है, लेकिन समर्थ संकल्प का कितना जमा किया, समर्थ संकल्प कितने जमा किए? चौथा, शुभ भावना तो रखी, परंतु उसका रिस्पांस क्या था, रिस्पांस क्या मिला? पांचवा, सबसे पावरफुल,
चाहे वो बदले नहीं
बदले, बदले या ना बदले हम संतुष्ट रहे, तो सुख कितनों को दिया सार में, राजी कितनों को किया, समर्थ संकल्प कितने किए, रिस्पांस कितना मिला शुभ भावना का, और पांचवा संतुष्ट कितने रहे। ये पांच सूक्ष्म चेकिंग करने के लिए कल बाबा ने कहा, सूक्ष्म चेकिंग करो, अंतर्मुखी होकर करो, तो क्या हो जाएगा, प्राइस मिलेगा। फिर बाबा ने क्या कह दिया बाद में, अभी मुबारक दे दे, प्राइस बाद में देंगे। और प्राइस किस किस को देंगे, और उसमें भी गड़बड़ करते हैं हाथ उठाने में। क्या गड़बड़ करते हैं? बिना समझ के हाथ उठाते हैं, मिक्स हाथ उठाते हैं। इसके लिए बाबा फिर कैसे प्राइस दे देगा?
ज्यादा तो आए भी नहीं
और ज्यादा आए नहीं, सारे हैं ही नहीं, सारे इकट्ठे हुए नहीं है, इसके लिए कैसे प्राइस देंगे? चारों ओर के आए नहीं।
अगर प्राइस देंगे तो बाद में उल्टा करेंगे तो बाबा के ऊपर बोझ
चढ़ेगा। बाबा के ऊपर बोझ, हिसाब किताब भगवान के हिसाब किताब, किसकी? आत्माओं के साथ। तो ये थी 26 जनवरी 1970 की, अभी है 2 जुलाई 1970 की मुरली। अभी यही तीव्र पुरुषार्थ करना है। इस हफ्ता हम केवल वैराग पर पढ़ेंगे, बाबा ने वैराग का होमवर्क दिया है। अभी यही तीव्र पुरुषार्थ करना है, इस पुरानी दुनिया से बहुत सहज बेहद का वैराग लाने का साधन क्या है? क्या साधन है? कल वैराग की क्या परिभाषा दी थी संतोष भाई? वैराग की परिभाषा दी है कल बाबा ने, होते हुए भी दूर रहना, यह है वैराग। है परंतु दूर, किसका उदाहरण दिया? ब्रह्मा बाबा का। क्या उदाहरण दिया? साधन तो दूसरों को दिए, खुद प्रयोग नहीं किया। एक और वैराग का, यज्ञ की स्थापना का भी उदाहरण बाबा ने दिया। क्या स्थापना का उदाहरण दिया? यज्ञ की स्थापना में क्या था? बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े, 14 वर्ष तपस्या की, लक्ष्य फिक्स था बिल्कुल, बस उतना ही, तपस्या ही करना है, इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है। यहाँ पर समय कौन सा चल रहा है? ये बस, अगर ये छोड़ के, ब्राह्मण जीवन में तपस्या ज्ञान और योग छोड़ के करने की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें व्यक्ति भटकता है, सोचता है ये जरूरी है, भगवान क्या कह रहा है? पर तपस्या का वायुमंडल फैलाओ। चार कारण बताए उसके लिए, कौन से? कल की मुरली से सबसे पहले तो वैराग, किससे? साधनों से, साधना कम ना हो, वैराग हो, साधन बहुत मिले, आवश्यकता से कहीं कहीं ज्यादा मिले, प्रयोग साधनों का ज्यादा कर रहे, जितना चाहिए उतना, रहना खाना पीना तो बाबा ने दे दिया है, अब जिसको नहीं मिला है उसका कारण है अलबेलापन और आलस, ये उसी का कारण है, उसके वजह से बाबा ने तो दे दिया। एक तो ब्राह्मणों के लिए का वैराग की बात है, दूसरी बात, दूसरी कैटेगरी कौन सी है संसार की? भक्त, संसार की आत्माएं क्या है, हद की इच्छाओं के कारण दुखी, परेशान, अशांत, तो उनको भी वैराग्य वृत्ति से ही, जब तक आपकी वैराग्य वृत्ति उन तक ना पहुंचे या उनके उनमें बेहद का वैराग ना उत्पन्न ना हो, वो परेशानी से छूट नहीं सकते। सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी, सहयोगी जो आत्माएं आए हैं, बहुत फर्स्ट क्लास आत्माएं जो आई है अभी, उनको क्या सहयोगी रखना है क्या? केवल वो कैसे बनेंगे सहयोगी? वैराग्य वृत्ति के द्वारा, तपस्या के वातावरण द्वारा, साधना के वातावरण द्वारा। और चौथी बात कौन सी कही वैराग के लिए बाबा ने? तुम सब कौन हो? जड़े, जड़ नहीं, जड़े, जड़े हो। अच्छा, तो हम सब जड़े हैं, फाउंडेशन है, हमारी किरणें विश्व में फैलेगी। अगर हमारे अंदर मोह है, अगर हमारे अंदर राग है, हमारे अंदर आसक्तियां है, तो वही संसार में भी फैलेगी। तुम्हारा एक एक संकल्प संसार तक पहुंचता है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो संसार की जो स्थिति नीचे जा रही है उसके लिए। इसके लिए स्वयं में वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करना है। बाबा यहां साधन पूछ रहे, सहज साधन कौन सा है? स्नेह, इतना स्नेह कि वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाए, भगवान से सर्व संबंध। अब तक तो स्नेह कैसा था? बिखरा हुआ था, टुकड़े टुकड़े, विभाजित था, खंडित था। अभी अखंड है, अभी एक से सर्व संबंध है। दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां, तो अभी एक से सर्व संबंध। क्या साधन है? एक तो स्नेह, दूसरा नहीं, वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो उसके साधन। संसार के दुखों का चिंतन, बराबर, संसार के दुखों का चिंतन, संसार की गिरती हुई हालत का चिंतन, संसार के प्रति वैराग्य। यह संसार क्या है? विकारी संसार है। यहाँ पर कभी किसी की इच्छाएं आज तक पूर्ण हुई नहीं है। व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है, परंतु कभी इच्छा पूर्ण नहीं होती है। इच्छाओं का कल कह रहे थे ना, उनकी स्वभाव ही असंतुष्टता, वासना का स्वभाव है अतृप्ति। कितना भी भोगो अतृप्ति, कुछ भी करो कभी ही तृप्त नहीं होती, उसका स्वभाव उसकी फितरत में है अतृप्ति। तो ये स्वभाव है उनका। हद की इच्छाओं को ही कारण बताया कल बाबा ने, ये अशांति और दुख और परेशानी, बेचारे बेचारे कहा उनको। तो संसार के दुखों का चिंतन, गृहस्थ जीवन में कितने दुख है उसका चिंतन, मेरा ये, मेरा वो, मेरी ये, मेरी वो, कोई किसी का नहीं है इधर, फिर भी जताते रहते हैं मेरे है, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। ना तो कोई पति किसी पत्नी का है, ना पत्नी किसी पति की है, कोई किसी का नहीं है, ना बच्चे माँ बाप के, ना माँ बाप बच्चों के, सब भ्रम, भ्रमित है सब कुछ, सारा भ्रम उत्पन्न हुआ है, स्वप्नव्रत है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, यह संसार क्या है? स्वप्नव्रत है। एक ही मुरली में अभी तक सुना है, इसके बाद कभी नहीं आया। ये संन्यास और वैराग भक्ति में बहुत आता है, यहाँ पर बाबा ने एक ही बार कहा है अब तक, यह संसार स्वप्नव्रत है। ये सब स्वप्न है, और जो है वो दिखाते है। जनक राजा जो होता है वो एक बार स्वप्न देखता है, स्वप्न में देखता है कि दूसरे राजा ने मुझ पर आक्रमण कर दिया, हमारे राज्य पर, और फिर वो हार गया, बीवी बच्चे सब मर गए। फिर वो भाग रहा है अपने राज्य से, सैनिक उसके पीछे, भागते भागते राज्य की सीमा से बाहर गया, और फिर भटक रहा है यहाँ वहां, फटे कपड़े, कितने दिनों तक भूखा है, कुछ नहीं मिल रहा है उसको, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, और फिर एक गांव से दूसरे गांव, खाने को कुछ नहीं है, फिर देखा कि कहीं गांव में कहीं भोजन बट रहा है, भाग भाग के जाता है, भाग भाग के जाता है। वो जो भोजन बांटने वाला होता है, जब वो पहुंचता है, बस दे चुका होता है किसी को, बस एक ही दाना बच जाता है। वो दाना लेने जाता है तो उधर से कौवा आता है, वो भी लेके चला जाता है, और वो धाड़ से उठता है, और फिर अपने गुरु के पास जाता है, कहता है कि ये अभी ये जो मैंने देखा वो सत्य था, और ये अभी जो देख रहा हूं संसार, ये स्वप्न है, या वो स्वप्न था ये सत्य है, या ये स्वप्न है और वो सत्य था, सत्य क्या है दोनों में से? ये जो संसार है ये सत्य है और वो स्वप्न था, कि वो सत्य था और ये संसार अभी जो देख रहा हूं वो कहते हैं ना वो सत्य ना वो, ये सत्य है, सत्य एक ही है। वो आत्मा का ज्ञान देता है, तुम ब्रह्म, वहां तो ब्रह्म की बात होती है, तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, बस यही एक सत्य है, बाकी ये संसार सब कुछ स्वप्नप्रत है। यहाँ के संबंध, कौन किसका क्या, इस जन्म में है, इसके पहले क्या थे, अभी किसी से बहुत मोह है, बहुत मोह है किसी व्यक्ति से, वो भी कब तक रहेगा? मोह कभी भी आत्मा को शांत और तृप्त नहीं कर सकता, वो दुखी बना देता है, उसको परेशान कर देता है, हलचल रहती है हमेशा, अंदर ही अंदर घुटते घुटते मरता है व्यक्ति, स्लो पॉइजन की तरह। क्या साधन होगा? तो ये बात थी दूसरी की, संसार के दुखों का चिंतन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। गीता में लिखा है कि इन चीजों का चिंतन करना है, जन्म का, जन्म में भी कितना दुख है, माँ को भी दुख है तो बच्चे को भी दुख है, जन्म में दुख, मृत्यु में कितना दुख है, जन्म मृत्यु जरा, जरा अर्थात बुढ़ापा, बुढ़ापा में कितना दुख है। बुढ़ापा ही एक बीमारी है, जैसे पेशेंट को जाके देख लो, बूढ़े पेशेंट्स को हॉस्पिटल में कहीं पर भी कुछ कर नहीं सकते, कुछ डिपेंडेंट लाइफ है। और व्याधि, बीमारी आने के बाद कहाँ है वो सौंदर्य, कहाँ है, कुछ नहीं बचता है, जर्जर हो जाता है शरीर। ब्यूटी इज बट स्किन डिप, इंग्लिश में कहते हैं, जो सौंदर्य है बस ये स्किन तक ही है, इसके नीचे कुछ नहीं, चमड़ी तक ही है बस, चमड़ी को निकाल दो देखो अंदर क्या है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, संसार के इन चीजों का, दुखों का साक्षी होकर दर्शन करना, देखना जैसी परिस्थिति है, अपने आप को ही देखो तो पता चल जाएगा। जिस चीजों में हमको बहुत सुख मिला था, कुछ समय के बाद उसी ने सबसे ज्यादा दुख दिया। जिस व्यक्ति को हम समझ रहे थे ये हमारा सबसे प्रिय है, वही हमको सबसे ज्यादा दुख देगा। अनित्य संसार है, असार संसार है, उसमें व्यक्ति फंसे हुए है, सोचते हैं हम बहुत सुख में है। दूसरा कारण ये था, दूसरा साधन। तीसरा, एक तो स्नेह बताया वैराग विमर्ज करने के लिए, दूसरा संसार के दुखों का निरंतर चिंतन, समय की स्मृति। कौन सा समय चल रहा है, क्या करने का समय चल रहा है, भटकने का समय चल रहा है, भोजन और खान पान में डूबने का समय चल रहा है, या तपस्या करने का समय चल रहा है, स्थिति बनाने का समय चल रहा है। अभी समय गया तो फिर नहीं आएगा हाथ में, लंबे समय का पुरुषार्थ, बार बार बाबा ने कहा लंबे समय का पुरुषार्थ अचानक एवरेडी, कितनी मूल्य है इसके ऊपर, समय ये कौन सा चल रहा है। पिछली बार, पिछले ये संडे की छोड़कर पिछले संडे की मुरली, अशरीरीपन की विधि, क्या बोला था शिव बाबा ने, ब्रह्मा शिव बाबा ने क्या प्रश्न पूछा था, अशरीरी आत्मा को अशरीरी बनने में मेहनत क्यों, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या उत्तर दिया था, 84 जन्मों का चोला बदला है, पर शिव बाबा ने उसको रिजेक्ट कर दिया था इस उत्तर को, क्या कहा था, माना समय कौन सा चल रहा है, एक्सेप्टेबल नहीं था शिव बाबा को ये उत्तर। समय कौन सा, समय की स्मृति, संगम युग का समय चल रहा है, सदा खुश रहने का समय चल रहा है। हर मुरली में, अभी कल भी बाबा आएंगे, फिर से वही वही कुछ सालों से एक ही बात रिपीट हो रही है, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो, खुश रहो। अब खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे, यही सारी बातें चल रही है। समय कौन सा है, आज भी बोला खुशियों का सागर तुमको मिला है, किस लिए, खुशियों का अखुट खजाना तुमको बांटते हैं, इसके लिए तुम्हारी खुशी कभी भी गायब हो नहीं सकती, आज का वरदान है, खुश रहना, खुशी बांटना, कोई भी बात दुखी नहीं कर सकती, तो कोई भी बात, हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल हमारी जेब में हो, उसकी जेब में नहीं, उधर से दबाया खुश, उधर से दबाया दुखी, अच्छा बोला हमारी तारीफ की, मदद की, सहयोग दिया, स्नेह किया, खुश, अच्छे से नहीं बोला, व्यवहार खराब किया, दुखी। रिमोट कंट्रोल किधर है हमारा, देवेंद्र भाई किधर रखा है रिमोट कंट्रोल, बहुतों को दिया हुआ, एक भी नहीं, बहुतों को, कईयों के हाथ में। समय कौन सा, समय की स्मृति वैराग दिलाएगी। चौथा,
भूल गए हम सब अतिथि है,
हम यहाँ अतिथि है, हम यहाँ मेहमान है, ये हमारा घर है ही नहीं, हमारा घर उधर है कहीं और, यहाँ आए हैं, एक स्टेशन अहमदाबाद आबू रोड तक आना था, अहमदाबाद रुके है, वहां से ट्रेन चेंज है, थोड़े देर प्लेटफॉर्म क्या है वेटिंग वेटिंग रूम में रुके, ये संसारी वेटिंग रूम है पूरा, ये हमारा घर है ही नहीं, हमको वापस जाने की स्मृति, लास्ट संडे में वही था ना, वापस जाने की स्मृति, अभी वापस जाने का समय है, वापस जाने का समय है कि नए नए बंधन बनाने के समय है। कल बोला था मुक्त की परिभाषा क्या दी थी कमलेश भाई कल की मुरली में, 18 बंधन सबने तब निकाले थे, मुक्त अर्थात बाबा ने क्या कहा था, संग स्वप्न में भी बंधन की रूपरेखा न हो, ये है मुक्त। अभी फ्रेश बॉन्डेजेस क्रिएट करना है, फ्रेश रिलेशनशिप्स तैयार करना है, फेसबुक व्हाट्सएप और ट्विटर उनके द्वारा कि अपने आप को समेटना है, अभी नए नए दोस्त ढूंढना है, क्या करना है, समय कौन सा है, नए दोस्त बनाने का समय है, ये तो मुक्ति का समय चल रहा है, स्वयं को मुक्त करना है, बंधनों से मुक्त करना है, ये जंजाल है जिसमें आत्मा फंसी हुई है, ऐसी फंसी हुई कि निकलने का नाम नहीं उसमें से। तो क्या कहा हमने, मेहमान है और जाना है, पांचवा शमशान अपनी मृत्यु को देखना, बार बार शमशान घाट जाना, थोड़ा बीच बीच में जाते रहना, नहीं जाना चाहिए, जो भी इधर शरीर छोड़ता है जाना ही चाहिए, देखने के लिए आग शरीर को जलते हुए देखना है लपटों में, देखते रहना उसको तो वैराग्य इमर्ज होगा, संसार की अनित्यता का बोध होगा, संसार असार है उसका बोध होगा, ये देह केवल एक मिट्टी है इसका बोध होगा, ये देह का जो सौंदर्य है वो भ्रम है, कवियों ने उपन्यासकारों ने फिल्मों ने उसको ऐसा दर्शाया है जैसे ये बहुत ही अच्छा है, इससे अप्रतिम और कोई दूसरी वस्तु नहीं है, इसके लिए सन्यासियों का एक ग्रुप हमेशा अपने साथ वो कंकाल रखते हैं, कंकाल पता है ना, स्केलेटन, ये है अदृश्य, याद दिलाने के लिए सन्यासी राख लगा लेते हैं शरीर पे, राख किसका प्रतीक है, सब कुछ नष्ट हो जाना है, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ गारत हो जाएगा इस संसार में, जो भी दिख रहा है, वैराग लाने की विधियां निकाली है उन्होंने भी, कौन रखने को तैयार नहीं है लोग, कहाँ गया वो मोह, उस देह से जिसको मोह होगा कहाँ है वो, कहाँ है वो सौंदर्य, कितना अच्छा लगता होगा किसी को, अब कहाँ है, दुर्गंध है उसमें, रक्त हड्डी मांस मल और मूत्र से भरा ये देह है, बाहर से बहुत अच्छा रख रखा हो, इतना अच्छा कवर लगा के रखा है स्क्रीन सेवर, अंदर कुछ और ही है, ऊपर कुछ और है, वो बताया था ना, एक व्यक्ति जाता है, दो रहते मार्ग, एक इधर एक इधर, इधर नर्क का एरो रहता है, इधर स्वर्ग का, तो वो स्वर्ग का एरो देखता है, उसमें एक कंप्यूटर भी लगा रहता है कि स्वर्ग में क्या क्या है, अप्सराए है, नदियां है, झरने हैं, और नर्क में एकदम यातना वाला दिखाते हैं, तो वो कहता है मैं तो इधर ही जाऊंगा, जाता है तो देखता है यहाँ तो उस किसी को उबाल रहे हैं पानी में तेल में, किसी को मार रहे हैं, बहुत सारी यातनाएं सहन करके, वो बोलते वो क्या था, वो कहते वो स्क्रीन सेवर था, अंदर ये है इसके लिए, तो और क्या है, वैराग वृत्ति धारण करने का साधन, देह संपूर्ण सत्य नहीं है, इस देह में ही सारे संसार फंसा हुआ है, देह को ही सब कुछ मानता है, सबसे पहला वैराग्य तो देह का ही वैराग्य है, सुखों का भोग करने की अभिप्सा इसमें इतनी भरी पड़ी है क्योंकि जन्म जन्म से आत्मा ने भोगा है, अचानक उसको वैराग्य नहीं आने वाला है, उसे केवल सहज 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 योग सहज राजयोग बोलने से नहीं होने वाला है कुछ, सहज राजयोग स्क्रीन से भरे अंदर हट योग अंदर में जबरदस्त साधना और तपस्या की आवश्यकता है, बिना उसके नहीं होने वाला है। इतना भोगा है आत्मा ने, कैसे उसके संस्कार जाएंगे। वासनाएं कूट कूट कर भरी हुई है, केवल ज्ञान में आ गए और सुन लिया काम महाशत्रु है आदि मध्य अंत दुख देता है, काम महाशत्रु है आदि मध्य अंत दुख देता है। सुना इतना सुना इतना सुना इतना सुना है कि अब प्रभाव होना बंद हो गया है। आत्मा समझ के बाप को याद करो, विश्व की बादशाही तुम्हें मिलने वाली है। ये सहज राज होगा, बाप तुमको पढ़ाते है, तुमको नशा रहना चाहिए, बाप पढ़ाते है। नशा चढ़ता ही नहीं है, क्या करे, दुनिया खत्म होने वाली है, फिर भी असर होना बंद हो गया है। एक ही बात बार बार सुनी जाती है तो असर कम हो जाते हैं थोड़ा। और भी कोई साधन है जो बाबा ने बोला वो अब तक नहीं निकला है, वो हो गया। वैराग, वैराग कैसे आए, अपनी मृत्यु को देखना, हो गया घर जाने की स्मृति, नई दुनिया की स्मृति, फिर भी बाबा का नहीं आया अभी तक, परंतु नई दुनिया की स्मृति, यहाँ की जो प्राप्तियां यहाँ से हुई है बाप से उनकी स्मृति, खजानों की स्मृति, प्राप्तियों से प्राप्तियों की स्मृति, भाग्य की स्मृति, तो सहज ही संसार से राग रगे जो है वो कटती जाएगी। सजाओ की स्मृति, हाँ उस दिन था ना, चार्ट रखो, उससे डर रहेगा थोड़ा, तो सजाओ की स्मृति, क्या क्या सजा मिलने वाली है। आपने कहानी भी सुनाई थी एक बार, वो किसकी थी वो मुझे याद नहीं, पर वो खाता नहीं है कुछ तो बकरेगा वाली, हाँ तो उसको डर रहता है फिर हमेशा, थोड़ा डर भी रहना चाहिए, डर आवश्यक है। मर्यादाओं की स्मृति, अभी यही तीव्र पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी दुनिया से बहुत सहज बेहद का वैराग लाने का साधन क्या है, कोई कोई ने बताया, कईयों ने बताया होगा, जिन्होंने जो बात सुनाई बहुत सहज समझ सुनाई ना, अगर सहज ही है तो बेहद के वैरागी तो सहज बन गए, अगर अपने से ही न लगाया तो दूसरों से कैसे लगाएंगे। बेहद का वैराग कहते हैं, जो वैरागी होते हैं वह कहाँ निवास करते हैं, बहुत सरल युक्ति बताते हैं कि बेहद के वैरागी बनना है तो सदैव अपने को, सदैव अपने को क्या, वानप्रस्थी समझो, सदैव अपने को वानप्रस्थी समझो, राजयोगी समझो, राजऋषि समझो, वनवाह में है ये समझो, ऊंचे कपड़े ऊंची फैशन तुमको करना नहीं, तुम वनवाह में हो, गुफा में बैठे हुए, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर तपस्या करने वाली मैं तपस्वी महायोगी तपस्वी आत्मा हूँ, और एकांतवासी समझो, एकांत अर्थात जीते जी मौत की अवस्था में रहना, एकांत की परिभाषा उस दिन बाबा ने दी थी, एकांत में चले जाओ, एक के याद में शरीर का अंत हो जाओ, ये है एकांत। और क्या समझो, मेहमान समझो, एक तो हमने बोल दिया था, और उपराम समझो, उपराम स्थिति है जो प्राप्त की जाती है समझना, और अवतार समझो, अवतार को हमेशा स्मृति रहती है, जैसे कृष्ण का बताया ना, वो पार्ट पूरा हुआ, अभी उसको पता है अभी मेरा दूसरा पार्ट चालू हो रहा है, उधर की कोई बात इधर नहीं, बीती सो बीत गई सो बात गई। मधुबन कभी छाती ठोक ठोक के रोता नहीं है कि फूल झड़ गए, मदिरा वाले कभी रोता नहीं है मधुघट मधु प्याले टूट गए उसके लिए, रोज मारा उसके लिए कौन रहे। और जी मैं त्यागी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, इसमें और एक बात बोली अभी तक नहीं आई है, वैरागी बनने का सहज साधन, ज्ञान चिता पर बैठ जाओ, ज्ञान अग्नि प्रज्वलित करो, ज्ञान कुंड में बैठ जाओ, बेहद की वानप्रस्थी, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक समझो, और
कॉन्ट्रास्ट देखो, मन बना भव और कॉन्ट्रास्ट देखो,
कौन सा कॉन्ट्रास्ट,
अपने को मन बना भव रखो और कॉन्ट्रास्ट देखो,
कौन सा कॉन्ट्रास्ट देखो, किसका,
सत्य और असत्य,
सत्य असत्य, नित्य अनित्य, झूठ और
ये महान अंतर देखो,
और तो सदैव अपने को क्या समझो, आत्मा समझो, चलो ठीक है, अशरीरी आत्मा समझो। बहुत सरल युक्ति बताते हैं कि बेहद के वैरागी बनने हैं तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझो। लेकिन मधुबन को खाली नहीं देखना, मधुबन अर्थात मधुबन कोई एक केवल रहने का स्थान मात्र नहीं है, ये भौगोलिक व्यवस्था नहीं है। मधुबन शुद्ध संस्कृति का द्वीप है, द्वीप द्वीप नहीं द्वीप है। यहाँ पवित्रता की जो कुंजी है वो हृदय में रखने के लिए है। मधुबन केवल स्थान नहीं है, कुछ और भी है। लेकिन मधुबन को खाली नहीं देखना, मधुबन है ही किसके साथ? मधुसूदन के साथ। मधुबन है ही मधुसूदन के साथ। तो मधुबन याद आने से क्या क्या याद आ जाएगा? मीठा मधुबन देख के बाबा याद तुम्हारी आती है। मधुबन देखने से चिमन भाई क्या क्या याद आ जाएगा? कल की मुरली में भी मधुबन का वर्णन था, जैसे मधुबन में ब्रह्मा बाबा ने त्याग तपस्या और कर्म के वाइब्रेशन यहाँ समाये हुए हैं, वैसे ही विशेष आत्माओं के वायुमंडल कभी उसको देखते तो जैसे अलौकिक अनुभव होता है, अलौकिक प्रभाव उनका है यहाँ पर। तो मधुबन को देखते हैं तो क्या याद आना चाहिए? बाबा याद आ जाएगी, मम्मा याद आता है, सेवा, मुरली,
मधुबन में राधिका नाचे
भी। गोप गोपियों का गायन किसका है? हमारा है, गोप गोपियों का गायन हमारा है। और तपस्या, मधुबन में आते ही ये याद आया ये तपस्या का समय है। यहाँ किस लिए आए थे? तपस्या करने आए थे।
जो भी आते हैं अपना जेब में जो है ना डाल के जाते,
स्वाहा करने का ये स्थान है यज्ञ कुंड। तो मधुबन याद आने से बाप दादा याद आएंगे, दैवी परिवार, त्याग तपस्या और सेवा भी याद आ जाते हैं। तो आज सारे दिन भर मधुबन में घूमते हुए सोचो कहाँ है, कौन सा स्थान है, मधुबन के नामों की स्मृति लाओ, जो कुछ स्लोगन जहां जहां लिखे हुए हैं उनको देखो और थोड़ी देर दृष्टि वहां ठहराओ, उनके ऊपर थोड़ा चिंतन भी करो। कितने सारे स्लोगन लगे हुए हैं, एक दिन यही अभ्यास करो, जो जो स्लोगन है केवल उनको देखना और क्या क्या लिखा है वहां पर। मधुबन तपस्या भूमि भी है। मधुबन एक सेकंड में सभी से त्याग कराता है। यहां बेहद के वैरागी बन गए हो ना तो मधुबन है ही त्यागी वैरागी बनाने वाला। केवल आने मात्र से वैराग उत्पन्न होता है संसार से। जब बेहद के वैरागी बनेंगे तब बेहद की सर्विस कर सकेंगे, कहां भी लगाव नहीं। कल ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया था, बच्चों में भी लगाव नहीं तो वैभव में भी लगाव नहीं और बच्चों में भी लगाव नहीं। ये विशेषता देखी, अपने आप से भी लगाव नहीं लगाना है तो औरों की तो बात ही छोड़ो, अपने आप से भी लगाव नहीं लगाना है। अपने आप से लगाव अर्थात अपने आप से लगाव की क्या परिभाषा? देह से, मेरी विशेषता, मेरा ये अच्छा है, मेरा वो अच्छा है, मियां मुट्ठी समझना, शेखी बगारना, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो अपना ही अपने को महान समझना, वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, वो दूसरा है। तो जब अपनी ही देह से लगाव नहीं रखना है तो दूसरों की देह से क्या लगाव रखना है? अपनी ही देह से नष्ट होना होना है तो दूसरों की देह से क्यों लगाव रखने की तो बात ही नहीं है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो फिर से। अच्छा, ओम शांति।